14वां सर्ग। उस दिन से जालपा के प्रति स्नेह में सेवा भाव का उदय, पति स्नेह में सेवा भाव का उदय हुआ। वह स्नान करने जाता तो उसे अपनी धोती चुनी हुई मिलती, आले पर तेल और साबुन भी रखा हुआ पाता। जब दफ्तर जाने लगता तो जालपा उसके कपड़े लाकर सामने रख देती। पहले पान मांगने पर मिलते थे, अब जबरदस्ती खिलाए जाते थे। जालपा उसका रुख देखा करती, उसे कुछ कहने की जरूरत न थी। यहाँ तक कि जब वह भोजन करने बैठता तो वह पंखा झला करती। पहले वह बड़ी अनिच्छा से भोजन बनाने जाती थी और उस पर भी बेगार सी टालती थी। अब बड़े प्रेम से रसोई में जाती। चीज़ें अब भी वही बनती थी पर उनका स्वाद बढ़ गया था। रमा को इस मधुर स्नेह के सामने वह दो गहने बहुत ही तुच्छ जंचते थे। उधर जिस दिन रमा ने गंगू की दुकान से गहने खरीदे, उसी दिन दूसरे सराफों को भी उसके आभूषण प्रेम की सूचना मिल गई। रमा जब उधर से निकलता तो दोनों तरफ से दुकानदार उठ उठ कर उसे सलाम करते। आइए बाबूजी, पान तो खाते जाइए, दो एक चीज़ें हमारी दुकान से तो देखिए। रमा का आत्मसंयम उसकी साख को और भी बढ़ाता था। यहाँ तक कि एक दिन एक दलाल रमा के घर पर आ पहुँचा और उसके नहीं नहीं करने पर भी अपने संदूक जी खोल ही दी। रमा ने उसे पीछा छुड़ाने के लिए कहा, भाई इस वक्त मुझे कुछ नहीं लेना है, क्यों अपना और मेरा समय नष्ट करोगे। दलाल ने बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी देख तो लीजिए, पसंद आए तो लीजिएगा, नहीं तो न लीजिएगा, देख लेने में तो कोई हर्ज नहीं है। आखिर रईसों के पास न जाएं तो किसके पास जाएं? औरों ने आपसे गहरी रकमें मारी, हमारे भाग्य में भी बदा होगा तो आपसे चार पैसा पा जाएंगे। बहू जी और माई जी को दिखा लीजिए, मेरा मन तो कहता है कि आज आप ही के हाथों बोहनी होगी। रमानाथ, औरतों के पसंद की न हो, चीज़ें अच्छी होंगी ही, पसंद आते क्या देर लगती है, लेकिन भाई इस वक्त हाथ खाली है। दलाल हंसकर बोला, बाबूजी बस ऐसी बात कह देते हैं कि वाह आपका हुक्म हो जाए तो 1500 आपके ऊपर निछावर कर दें। हम लोग आदमी का मिजाज देखते हैं बाबूजी, भगवान ने चाहा तो आज मैं सौदा करके ही उठूंगा। दलाल ने संदूकची से दो चीज़ें निकाली, एक तो नए फैशन का जड़ाऊ कंगन था और दूसरा कानों का रिंग। दोनों ही चीज़ें अपूर्व थी, ऐसी चमक थी मानो दीपक जल रहा हो। 10 बजे थे, दयानाथ दफ्तर जा चुके थे, वह भी भोजन करने जा रहा था, समय बिल्कुल न था। लेकिन इन दोनों चीज़ों को देखकर उसे किसी बात की सूझ ही न रही। दोनों केस लिए हुए घर में आया, उसके हाथ में केस देखते ही दोनों स्त्रियां टूट पड़ी और उन चीज़ों को निकाल निकाल कर देखने लगी। उनकी चमक दमक ने उन्हें ऐसा मोहित कर लिया कि गुण दोष की विवेचना करने की उनमें शक्ति ही न रह गई। रमानाथ, आजकल की चीज़ों के सामने तो पुरानी चीज़ें कुछ जंचती ही नहीं। जालपा, मुझे तो उन पुरानी चीज़ों को देखकर कै आने लगती है, न जाने उन दिनों औरतें कैसे पहनती थी। रमा ने मुस्कुरा कर कहा, तो दोनों चीज़ें पसंद है ना। जालपा, पसंद क्यों नहीं है, अम्मा जी तुम ले लो। रामेश्वरी ने अपनी मनोव्यथा छिपाने के लिए सिर झुका लिया। जिसका सारा जीवन गृहस्थी की चिंताओं में कट गया, वह आज क्या स्वप्न में भी इन गहनों के पहनने की आशा कर सकती थी। आह उस दुखिया के जीवन की कोई साध ही न ही पूरी हुई, पति की आय ही कभी इतनी न हुई कि बाल बच्चों के पालन पोषण के उपरांत कुछ बचता। जब से घर की स्वामिनी हुई तभी से मानो उसकी तपस्या का आरंभ हुआ और सारी लालसाएं एक एक करके धूल में मिल गई। उसने उन आभूषणों की ओर से आंखें हटा ली, उनमें इतना आकर्षण था कि उनकी ओर ताकते हुए वह डरती थी कहीं उसकी विरक्ति का पर्दा न खुल जाए। बोली, मैं लेकर क्या करूंगी बेटी, मेरे पहनने ओढ़ने के दिन तो निकल गए, कौन लाया है बेटा, क्या दाम है इनके। रमानाथ, एक सराफ दिखाने लाया है, अभी दाम आम नहीं पूछे मगर ऊंचे दाम होंगे, लेना तो था ही नहीं, दाम पूछकर क्या करता। जालपा, लेना ही नहीं था तो यहां लाए क्यों। जालपा ने यह शब्द इतने आवेश में आकर कहे कि रमा खिसिया गया। उनमें इतनी उत्तेजना, इतना तिरस्कार भरा हुआ था कि इन गहनों को लौटा ले जाने की उसकी हिम्मत न पड़ी। बोला, तो ले लूं। जालपा, अम्मा लेने को ही नहीं कहती तो लेकर क्या करोगे, क्या मुफ्त में दे रहा है। रमानाथ, समझ लो मुफ्त ही मिलते हैं। जालपा, सुनती हो अम्मा जी इनकी बातें, आप जाकर लौटा आइए, जब हाथ में रुपये होंगे तो बहुत गहने मिलेंगे। रामेश्वरी ने मोहासक्त स्वर में कहा, रुपये अभी तो नहीं मांगता। जालपा, उधार भी देगा तो सूद तो लगा ही लेगा। रमानाथ, तो लौटा दूं, एक बात चटपट तय कर लो, कर डालो, लेना हो ले लो, न लेना हो तो लटा दो, मोह और दुविधे में न पड़ो। जालपा को यह स्पष्ट बातचीत इसमें बहुत कठोर लगी। रमा के मुंह से उसे ऐसी आशा न थी, इनकार करना उसका काम था, रमा को लेने के लिए आग्रह करना चाहिए था। रामेश्वरी की ओर लालायित नेत्रों से देखकर बोली, लौटा दो, रात दिन के तकाजे कौन सहेगा। वह केसों को बंद करने ही वाली थी कि रामेश्वरी ने कंगन उठाकर पहन लिया, मानो क्षण भर पहनने से ही उसकी सुधा साध पूरी हो जाएगी। फिर मन में इस ओछेपन पर लज्जित होकर वह उसे उतारना ही चाहती थी कि रमा ने कहा, अब तुमने पहन लिया है अम्मा तो पहने रहो, मैं तुम्हें भेंट करता हूँ। रामेश्वरी की आंखें सजल हो गई। जो लालसा आज तक न पूरी हो सकी वह आज रमा की मातृभक्ति से पूरी हो रही थी। लेकिन क्या वह अपने प्रिय पुत्र पर ऋण का इतना भारी बोझ रख देगी? अभी वह बेचारा बालक है, उसकी सामर्थ्य क्या है? न जाने रुपये जल्द हाथ आए या देर में, दाम भी तो नहीं मालूम। अगर ऊंचे दाम का हुआ तो बेचारा देगा कहाँ से? उसे कितने तकाजे सहने पड़ेंगे और कितना लज्जित होना पड़ेगा। कातर स्वर में बोली, नहीं बेटा, मैंने यूं ही पहन लिया था, ले जाओ, लौटा दो। माता का उदास मुख देख रमा का हृदय मातृ प्रेम से हिल उठा। क्या ऋण के भय से वह अपनी त्याग मूर्ति माता की इतनी सेवा भी न कर सकेगा? माता के प्रति उसका कुछ कर्तव्य भी तो है। बोला, रुपए बहुत मिल जाएंगे अम्मा, तुम इसकी चिंता मत करो। रामेश्वरी ने बहू की ओर देखा, मानो कह रही थी कि रमा मुझ पर कितना अत्याचार कर रहा है। जालपा उदासीन भाव से बैठी थी, कदाचित उसे भय हो रहा था कि माता जी यह कंगन ले न लें। मेरा कंगन पहन लेना बहू को अच्छा नहीं लगा, इसमें रामेश्वरी को संदेह नहीं रहा। उसने तुरंत कंगन उतार डाला और जालपा की ओर बढ़ाकर बोली, मैं अपनी ओर से तुम्हें भेंट करती हूँ बहू, मुझे जो कुछ पहनना ओढ़ना था ओढ़ पहन चुकी, अब जरा तुम पहनो देखूं। जालपा को इसमें जरा भी संदेह न था कि माता जी के पास रुपए की कमी नहीं। वह समझी शायद आज वह पसीस गई हैं और कंगन के रुपए दे देंगी। एक क्षण पहले उसने समझा था कि रुपए रमा को देने पड़ेंगे, इसलिए इच्छा रहने पर भी वह उसे लौटा देना चाहती थी। जब माता जी उसका दाम चुका रही थी तो वह इनकार क्यों करती? मगर ऊपरी मन से बोली, रुपए न हो तो रहने दीजिए अम्मा जी, अभी कौन जल्दी है। रमा ने कुछ चिढ़कर कहा, तो तुम यह कंगन ले रही हो? जालपा, अम्मा जी नहीं मानती तो मैं क्या करूं? रमानाथ, और ये रिंग इन्हें भी क्यों नहीं रख लेती? जालपा, जाकर दाम तो पूछाओ। रमा ने अधीर होकर कहा, तुम इन चीजों को ले जाओ, तुम्हें दाम से क्या मतलब? रमा ने बाहर आकर दलाल से दाम पूछा तो सन्नाटे में आ गया। कंगन 700 के थे और रिंग 150 के। उसका अनुमान था कि कंगन अधिक से अधिक 300 के होंगे और रिंग 40-50 रुपए के। पछताए कि पहले ही दाम क्यों न पूछ लिए, नहीं तो इन चीजों को घर में ले जाने की नौबत ही क्यों आती? फेरते हुए शर्म आती थी, मगर कुछ भी हो फेरना तो पड़ेगा ही, इतना बड़ा बोझ वह सिर पर नहीं ले सकता। दलाल से बोला, बड़े दाम है भाई, मैंने तो 300-400 के भीतर ही आंका था। दलाल का नाम चरणदास था। बोला, दाम में एक कौड़ी फर्क पड़ जाए सरकार तो मुंह न दिखाऊं। धनी राम की कोठी का तो माल है, आप चलकर पूछ लें। दमड़ी रुपए की दलाली अलबत्ता मेरी है, आपकी मर्जी हो दीजिए या न दीजिए। रमानाथ, तो भाई इन दामों की चीजें तो इस वक्त हमें नहीं लेनी है। चरणदास, ऐसी बात न कहिए बाबूजी, आपके लिए इतने रुपए कौन बड़ी बात है, दो महीने भी माल चल जाए तो इसके दोनों हाथ आ जाएंगे, आपसे बढ़कर कौन शौकीन होगा। यह सब रईसों के ही पसंद की चीजें हैं, गंवार लोग इनकी कद्र क्या जाने। रमानाथ, 850 बहुत होते हैं भाई। चरणदास, रुपयों का मुंह न देखिए बाबूजी, जब बहूजी पहन कर बैठेंगी तो एक निगाह में सारे रुपए तर जाएंगे। रमा को विश्वास था कि जालपा गहनों का मूल्य सुनकर आप ही बिचक जाएगी। दलाल से और ज्यादा बातचीत न की अंदर आकर बड़े जोर से हंसा, बोला, आपने इस कंगन का क्या दाम समझा था माजी? रामेश्वरी कोई जवाब देकर बेवकूफ न बनना चाहती थी, इन जड़ाऊ चीजों में नाप तौल का तो कुछ हिसाब रहता नहीं, जितने में तय हो जाए वही ठीक है। रमानाथ, अच्छा तुम बताओ जालपा, इस कंगन का कितना दाम आंकती हो? जालपा, 600 से कम का नहीं है। रमा का सारा खेल बिगड़ गया। दाम का भय दिखाकर रमा ने जालपा को डरा देना चाहा था, मगर 6 और 7 में बहुत थोड़ा ही अंतर था और संभव है चरणदास इतने ही पर राजी हो जाए। कुछ झेंप कर बोला, कच्चे नगीने नहीं हैं। जालपा, कुछ भी हो 600 से ज़्यादा का नहीं। रमानाथ, और रिंग का जालपा अधिक से अधिक 100 रुपये। रमानाथ यहाँ भी चूकी 150 मांगता है। जालपा जट्टू है कोई, हमें इन दामों लेना ही नहीं। रमा की चाल उल्टी पड़ी। जालपा को इन चीज़ों के मूल्य के विषय में बहुत धोखा न हुआ था। आखिर रमा की आर्थिक दशा तो उसे छिपी न थी, फिर भी वह 700 रुपये की चीज़ों के लिए मुंह खोल बैठी थी। रमा को क्या मालूम था कि जालपा कुछ और ही समझकर कंगन पर लहराई थी। अब तो गला छूटने का एक ही उपाय था, और वह यह कि दलाल 600 पराजी न हो। बोला, वह 850 से कौड़ी कम न लेगा। जालपा तो लौटा दो। रमानाथ, मुझे तो लौटाते शर्म आती है अम्मा, जरा आप ही दालान में चलकर कह दें, हमें 700 से ज़्यादा नहीं देना है। देना हो तो दे दो, नहीं चले जाओ। रामेश्वरी, हाँ अरे क्यों नहीं, उस दलाल से मैं बात करने जाऊँ। जालपा, तुम ही क्यों नहीं कह देते, इसमें तो कोई शर्म की बात नहीं। रमानाथ, मुझसे साफ जवाब न देते बनेगा, दुनिया भर की खुशामत करेगा। चुनी चुना आप बड़े आदमी हैं, रईस हैं, राजा हैं, आपके लिए 150 क्या चीज़ है, मैं उसकी बातों में आ जाऊँगा। जालपा, अच्छा चलो मैं ही कह देती हूँ। रमा, वाह फिर तो सब काम ही बन गया। रमा पीछे दबक गया। जालपा दलान में आकर बोली, जरा यहाँ आना जी। ओ शराफ, लूटने आए हो या माल बेचने आए हो। चरणदास बरामदे से उठकर द्वार पर आया और बोला, क्या हुक्म है सरकार। जालपा, माल बेचने आते हो या जटने आते हो, 700 रुपये कंगन के मांगते हो। चरणदास, 700 तो उसकी कारीगरी के दाम है हुजूर। जालपा, अच्छा तो जो उस पर 700 निछावर कर दे उसके पास ले आओ। रिंग की 150 कहते हो, लूट है क्या। चरणदास, बहू जी आप तो अंधेर करती हैं, कहाँ 850 और कहाँ 700। जालपा, तुम्हारी खुशी, अपनी चीज़ ले जाओ। चरणदास, इतने बड़े दरबार में आकर चीज़ लौटा ले जाऊँ, आप यूँ ही पहने, 10-5 रुपये की बात होती तो आपकी जबान न फेरता, आपसे झूठ नहीं कहता बाबूजी, इन चीज़ों पर 50 रुपया नफ़ा है, उसी 1 पैसे में दुकान का भाड़ा, बट्टा खाता, दस्तूरी दलाली सब समझिए। एक बात ऐसी समझ कर कहिए कि हमें भी 4 पैसे मिल जाएँ, सवेरे सवेरे लौटना न पड़े। जालपा, कह दिए वही 700। चरण ने मुँह बनाया मानो वह किसी धर्म संकट में पड़ गया है, फिर बोला, सरकार है तो घाटा ही पर आपकी बात नहीं टालते बनती, रुपए कब मिलेंगे। जालपा, जल्दी ही मिल जाएंगे। जालपा अंदर जाकर बोली, आखिर दिया कि नहीं 700 में, 150 साफ उड़ाए लिए जाता था, मुझे पछतावा हो रहा है कि कुछ और कम क्यों न कहा, ये लोग इस तरह ग्राहकों को लूटते हैं। रमा इतना भारी बोझ लेते घबरा रहा था, लेकिन परिस्थिति में कुछ ऐसा रंग पकड़ा कि बोझ उस पर लद ही गया। जालपा तो खुशी की उमंग में दोनों चीज़ें लिए ऊपर चली गई, पर रमा सिर झुकाए चिंता में डूबा खड़ा था। जालपा ने उसकी दशा जानकर भी इन चीज़ों को क्यों ठुकरा नहीं दिया, क्यों जोर देकर नहीं कहा मैं न लूँगी, क्यों दुविधे में पड़ी रही। 550 भी चुकाना मुश्किल था, इतने और कहाँ से आएंगे। असल में गलती मेरी ही है, मुझे दलाल को दरवाजे से ही धुतकार देना चाहिए था, लेकिन उसने मन को समझाया, यह अपने ही पापों का तो प्रायश्चित है, फिर आदमी इसलिए तो कमाता है, रोटियों के लाले थोड़े ही थे। भोजन करके जब रमा ऊपर कपड़े पहनने गया तो जालपा आईने के सामने खड़ी कानों में रिंग पहन रही थी, उसे देखते ही बोली, आज किसी अच्छे का मुंह देखकर उठी थी, 2 चीज़ें मुफ्त हाथ में आ गई। रमा ने विस्मय से पूछा, मुफ्त क्यों, रुपये न देने पड़ेंगे। जालपा, रुपये तो अम्मा जी देंगी। रमानाथ, क्या कुछ कहती थी। जालपा, उन्होंने मुझे भेंट दिया है तो रुपये कौन देगा। रमा ने उसे उसके भोलेपन पर मुस्कुराकर कहा, यही समझकर तुमने यह चीज़ें ले ली, अम्मा को देना होता तो उसी वक्त दे देती जब गहने चोरी गए थे, क्या उनके पास रुपये न थे। जालपा असमंजस में पड़कर बोली, तो मुझे क्या मालूम था, अब भी तो लौटा सकते हो, कह देना जिसके लिए लिया था उसे पसंद नहीं आया। यह कहकर उसने तुरंत कानों से रिंग निकाल लिए, कंगन भी उतार डाले और दोनों चीज़ें केस में रखकर उसकी तरफ इस तरह बढ़ाई जैसे कोई बिल्ली चूहे से खेल रही हो। वह चूहे को अपनी पकड़ से बाहर नहीं होने देती, उसे छोड़कर भी नहीं छोड़ती, हाथों को फैलाने का साहस नहीं होता था। क्या उसके हृदय की भी यही दशा न थी, उसके मुख पर हवाइयाँ उड़ रही थी, क्यों वह रमा की ओर न देखकर भूमि की ओर देख रही थी, क्यों सिर ऊपर न उठाती थी। किसी संकट से बच जाने में जो हार्दिक आनंद होता है वह कहाँ था। उसकी दशा ठीक उस माता की सी थी जो अपने बालक को विदेश जाने की अनुमति दे रही हो, वही व्यवस्था, वही कातरता, वही ममता इस समय जालपा के मुख पर उदय हो रही थी। रमा उसके हाथों से केसों को ले सके इतना बड़ा संयम उसमें न था। उसे तकाजे सहना, लज्जित होना, मुंह छिपाए फिरना, चिंता की आग में जलना, सब कुछ सहना मंजूर था। ऐसा काम करना नामंजूर था जिसे जालपा का दिल टूट जाए। वह अपने को अभागिन समझने लगे। उसका सारा ज्ञान, सारी चेष्टा, सारा विवेक इस आघात का विरोध करने लगा। प्रेम और परिस्थितियों के संघर्ष में प्रेम ने विजय पाई। उसने मुस्कुराकर कहा, रहने दो, अब ले लिया है तो क्या लौटाएं, अम्मा जी भी हंसेंगी। जालपा ने बनावटी कांपते हुए कंठ से कहा, अपनी चादर देखकर ही पांव फैलाना चाहिए, एक नई विपत्ति मोल लेने की क्या जरूरत है। रमा ने मानो जल में डूबते हुए कहा, ईश्वर मालिक है, और तुरंत नीचे चला गया। हम क्षणिक मोह और संकोच में पड़कर अपने जीवन के सुख और शांति का कैसा होम कर देते हैं। अगर जालपा मोह के इस झोंके में अपने को स्थिर रख सकती, अगर रमा संकोच के आगे सिर न झुका देता, दोनों के हृदय में प्रेम का सच्चा प्रकाश होता, तो वे पथ भ्रष्ट होकर सर्वनाश की ओर न जाते। 11 बज गए थे, दफ्तर के लिए देर हो रही थी, पर रमा इस तरह जा रहा था जैसे कोई अपने प्रिय बंधु की दाह क्रिया करके लौट रहा हो।